का था, रूह वही, रूह नया।
कच्ची पहली से लेकर आठवीं तक बंटी हमारे साथ पढ़ती रही थी। अभी वह पांचवीं में पहुंची ही थी, उसके पिता उसे स्कूल से छुड़ाने के लिए आ गए। हमारे स्कूल की बड़ी उस्तादिनी ने बंटी की फीस माफ कर दी और यूं उसे स्कूल न छोड़ने दिया। सातवीं और आठवीं कक्षा की लड़कियां देखने में एक साथ एक कमरे में बैठती थी, पर आधी छुट्टी के समय आठवीं की लड़कियां हम सातवीं की लड़कियों को अपने पास नहीं फटकने देती थी, हमेशा अलग होकर बातें करती रहती। हम सातवीं की लड़कियां जब उनके निकट जाती तो वे हमें दूर हटा देती। हमें सातवीं की लड़कियों पर गुस्सा आता था और हम सोचती थी कि जब हम आठवीं में होंगी तो सातवीं की लड़कियों के साथ कभी इस तरह नहीं करेंगे। और फिर हम आठवीं कक्षा में चढ़ी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले, हमसे भी वही बात हो गई जो हमने सोचा था कि हम कभी नहीं करेंगे। यह 13वां-14वां वर्ष पता नहीं कैसा होता है, ये शायद एक दहलीज होती है बचपन और जवानी के बीच में। इस वर्ष लड़कियों का एक पांव दहलीज के इधर और एक पांव दहलीज के उधर होता है। इन गर्मियों की छुट्टियों में बंटी को एक पड़ोसी लड़का सवाल समझाता रहा था। हर रोज छुट्टी के समय बंटी हमें छिप छिप कर उसकी बातें सुनाया करती थी। अब हम आठवीं की लड़कियां आधी छुट्टी के समय सातवीं की लड़कियों को पास फटकने नहीं देती थी। जिस दिन बंटी हमें उस लड़के की बात न सुनाती, हमें ऐसा लगता जैसे उस दिन स्कूल में आधी छुट्टी हुई ही नहीं थी। मेरी तो हंसपोल लेने की प्रीत है, और मुझे क्या लेना है उससे, और उसने क्या लेना है मुझसे, कभी कभी बंटी हमें इस तरह कहकर टालने लग गई थी। बंटी लाख टालती, पर उसके चेहरे से हमें प्रतीत होने लगा था कि वह हंस बोल लेने की प्रीत अब बंटी के कंठ में से होकर उसके दिल में उतरने लग गई थी। तभी तो अक्सर उसकी जुबान खुश्क हो जाती और वह ज्यादा बातें नहीं कर पाती थी। एक दिन उस पगली ने अपने हाथ में पेंसिल पकड़ी और गणित की कॉपी पर कोई 20 जगह उसका नाम लिख दिया, राजू राजू राजू। हमारी उस्तादिनी ने उसकी कॉपी देख ली। कक्षा में तो उसे कुछ ना कहा, पर जब आधी छुट्टी हुई तो उसे अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बंटी की मानो शामत आई हुई थी, पर हम तो बंटी की सहेलियां थी, हम सबके चेहरे उतरे हुए थे। काफ़ी समय बाद जब बंटी बाहर आई तो रो रो कर उसकी आँखें लाल हो चुकी थी। कॉपी पर जहाँ जहाँ राजू का नाम लिखा था, उस्तादिनी ने रबर से उसे मिटा दिया था। आठवीं कक्षा जब एक नाव की तरह वार्षिक परीक्षा के किनारे लग गई तो सभी लड़कियां यात्रियों की तरह एक दूसरे से अलग हो गई। हमारा ये स्कूल तो आठवीं कक्षा तक ही था, बहुत सी लड़कियां अलग अलग स्कूलों में दाखिल हो गई। बंटी सिलाई के स्कूल में चले गई। 2 साल बाद मुझे बंटी के विवाह का कार्ड मिला और लड़कियों को भी गया होगा। मैंने जल्दी से कार्ड पर लड़के का नाम पढ़ा, लिखा हुआ था कर्मचंद। कार्ड पर राजू की बजाय यद्यपि कर्मचंद लिखा हुआ था तो भी वह विवाह का कार्ड था, और हर एक विवाह को बधाई लेने का हक होता है। मैं भी बंटी के विवाह पर गई उसे बधाई देने। बंटी के हाथों में मेहंदी, बंटी की बाहों में कलीरे, मैंने बंटी को बधाई दी। मैं बंटी से उस हंस बोल लेने की प्रीत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर कुछ देर बाद वही मुझे एक तरफ ले गई और बोली, मेरी एक चीज संभाल कर रख लोगी? क्या? एक रुमाल। मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि रुमाल किसका है, रुमाल राजू का ही हो सकता था। इसमें ऐसी कौन सी बात है, रुमाल तुम अपनी और चीजों के साथ ही कहीं रख लो ना। पर उसके कोने में उसका नाम लिखा हुआ है, किसी को क्या पता वह किसका नाम है। सिर्फ राज लिखा होता कोई देखता पूछता तो मैं कह देती मेरी सहेली का नाम है, पर राजू लिखा हुआ है। राजू तो लड़कियों का नाम नहीं होता। किस चीज से लिखा हुआ है? उसने एक दिन पेंसिल से लिख दिया था, मैंने सुई धागे से कढ़ाई कर दी। धागा उधेड़ डालो। उधेड़ डालूं? ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बंती ने एक लंबी सांस भरी, कहने लगी, तुम्हें याद है एक दिन हमारी उस्तादनी ने रबर लेकर मेरी कॉपी में से उसका नाम ही मिटा डाला था? आज मैं उसी तरह से उसका नाम उधेड़ देती हूं। मेरा मन भर आया। बंती ने मेरे सामने ट्रंक में से सुर्ख रेशमी रुमाल निकाला और सुई लेकर उस पर कढ़ा राजू का नाम उधेड़ने में लग गई। बंती ने ही तो उसका नाम काढ़ा था। बंती ही की कॉपी पर से उसकी उस्तादिनी ने राजू का नाम मिटा डाला था। विवाह के कार्ड पर समाज ने राजू का नाम न लिखने दिया और आज वही बंती मेहंदी लगे हाथों से रुमाल पर से उसका नाम उधेड़ रही है। चलो छोड़ो अब इन बातों को, तुम खुद ही तो कहा करती थी ये हसबैंड लेने की प्रीत है। सोचा तो यही था, पर हसबो लेने का प्यार मेरी हड्डियों में समा गया है, लहू में रच गया है। बंती की आंखें भर आई। सुना है तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, अच्छे कर्मों वाली हो तुम, उसका नाम भी करमचंद। कितनी देर बाद मैंने बात को मोड़ा। नामों से भी कर्म बनते हैं, बंती ने सिर्फ इतना ही कहा। कभी चिट्ठी लिखा करोगी या शानी बनकर हम सबको भूल जाओगी? कहीं भूलना अपने बस में होता। बंती ने एक लंबी आह भरी। इस समय भी शायद उसके मन में सहेलियों का ख्याल नहीं था, सिर्फ राजू का ख्याल था। राजू को तुम चाहे भूलो ना भूलो, पर चिट्ठी तो तुम उसे नहीं लिख सकोगी। हमें कभी कभी लिख दिया करना, चाहे चिट्ठी में राजू की ही बातें लिखना। अच्छा, कभी कभी मन की भड़ास निकाल लिया करूंगी, पर एक बात है।
क्या?
तुम मुझे उसकी बात कभी ना लिखना। पता नहीं वे लोग कैसे हैं, बिल्कुल गांव में रहते हैं। सुना है चिट्ठी भी वहां हफ्ते में 2 बार जाती है। पते पर जिला, तहसील, डाक खाना, गांव और न जाने क्या क्या लिखना पड़ता है। शायद वे लोग मेरी चिट्ठी को पढ़कर ही दिया करेंगे। बंती को ससुराल गए आज 15 वर्ष हो गए हैं। पहले 4-5 वर्षों में उसने मुझे कुछ पत्र लिखे, ज्यादा नहीं, पर जितने भी लिखे उनमें उसके मन की भड़ास थी। मैं बंती को हमेशा जवाब देती रही, पर उसके कहने के मुताबिक सिर्फ रस्मी किस्म के ही जवाब उसके पास पहुंचते रहे, कभी उसके मन की बातों का जवाब नहीं लिखा। फिर 10 वर्ष बंती को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कोई पत्र न लिखा। मैंने समझा अब वह अपने परिवार में खो गई होगी। मैंने भी कभी पत्र न लिखा। सोचा कहीं मेरा पत्र उसकी किसी सोई हुई पीड़ा को न जगा दे। पर आज बंती का अचानक पत्र आया है। पता नहीं ये कैसा पत्र है। इसमें सिर्फ उसके मन की आवाज नहीं, इसमें जैसे हर स्त्री के मन की आवाज हो। मेरा मन भरा हुआ है। उसने मुझे जवाब देने से रोका है, नहीं तो आज मैं उसे बहुत लंबा पत्र लिखती और मेरा मन हल्का हो जाता। आज मैंने उसके सारे पत्र निकाल कर पढ़े। आज मैंने उसके सारे पुराने पत्र निकाले हैं। बीच के 2-3 पत्र नहीं मिल रहे और आज का पत्र भी सामने रखा हुआ है। एक बार सारे पत्रों को पढ़ रही हूँ। एक स्त्री के मन की आवाज। ऐसा गांव है जो आज काम वही कल का काम, ये पता नहीं लगता कि आज कौन सा दिन है। सिर्फ जब गांव में डाके आता है तो पता लगता है आज मंगलवार है या शनिवार। यहाँ पूरे हफ्ते में 2 बार डाके आता है, जैसे शहरों में तेल तांबा मांगने वाले हफ्ते में 2 बार आते हैं। जब डाके आता है मुझे ऐसा लगता है मानो वह कह रहा है मंगलवार तले भार तेल तांबे का दिन, या शनिवार तले भार तेल तांबे का दान। पर वे लोग पता नहीं कैसा तेल तांबा दान करते हैं जिन्हें उनके मित्रों के प्यारों के पत्र आते हैं। मैं किसके पत्र के लिए डाकिए का रास्ता देखूं? अच्छा, तुम ही मुझे 2 शब्द लिख देना, कोई बात ना लिखना पत्र में, बस इतना ही कि तुमको मेरा पत्र मिल गया है। मैं इतनी बात के लिए ही डाकिए का रास्ता देखूंगी। तुम्हारी बनती। तुमने बारात में मेरा ससुर देखा था, हिजाब रंगी दाढ़ी वाला। अगर तुम मेरी सास को देखो तो सच कहती हूँ हैरान रह जाओ। सास तो क्या, अभी वह पुत्रवधू भी नहीं लगती, बिल्कुल कुंवारी लगती है। उम्र में वह मुझसे 3-4 वर्ष ही बड़ी होगी, पर शारीरिक तौर पर बहुत कोमल है, पतली सी लचकती हुई हिरनी जैसी। चाहे वह मेरी सौतेली सास है, पर है तो सास ही ना। अगर वह मेरी सास ना होती तो सच कहती हूँ उसे अपनी सहेली बना लेती। आज मंगलवार था, डाकिए को आना था, मुझे ख्याल आया शायद तुम्हारा पत्र आए। मैं दरवाजे में खड़ी होकर डाकिए का रास्ता देखने लगी। मेरी सास भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। डाकिया आया, उसने मुझे एक पत्र दिया। मैंने सास के चेहरे की ओर देखा, उसका चेहरा बहुत ही उदास था। ऐसे लगता था जैसे आज जरूर ही किसी का पत्र उसके लिए आना था पर आया नहीं। भाभी, कोई चिट्ठी आनी थी तुम्हारी, मैंने उसे इतनी उदास देखकर पूछा। मुझे किसकी चिट्ठी आएगी, पहले तो उसने ये कहा और फिर कहने लगी, आनी तो थी एक चिट्ठी पर आई नहीं। किसकी चिट्ठी, मैंने फिर पूछा। ईश्वर की चिट्ठी, और मुझे किसकी चिट्ठी आएगी। लगता था वह अभी रो पड़ेगी पर रोई नहीं, या ऐसा रोना रोई जो किसी को दिखाई नहीं दिया। देखा, हम स्त्रियां कैसा रोना रो सकती हैं। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं भी जोर से रोऊं और वह भी जोर जोर से रो सके। तुम्हारी बनती। सच मानो, जब से यहाँ आई हूँ मुझे वह घर भी अपना नहीं लगा, बिल्कुल मेहमान सी लगती हूँ इस घर में। जब इस घर ने मुझे बांध लिया है, अब एक छोटा सा राजू आ गया है मुझे बांधने वाला। घर के सभी लोग उसे दीपक कहकर बुलाते हैं। शाम के समय काफ़ी ठंडक उतर आती है। मैं ये लाल रेशमी रुमाल उसके सर पर बांध देती हूँ। लाल रुमाल में वह और भी सुंदर लगता है। मैं उसे गोद में लेकर देर तक उसका मुंह देखती रहती हूँ। तुम्हारी बनती। मेरा राजू 3 वर्ष का हो गया है। तुम्हें अपने मन की बात बताऊं? कभी कभी जब मैं राजू के मुख को देखती हूँ तो देखते देखते उसका मुंह बड़ा हो जाता है, उसका कद भी बड़ा हो जाता है, जैसे मेरा राजू 25 वर्ष का हो गया हो और मैं अभी 20 वर्ष की हूँ। देखा कितनी पागल हूँ। बड़ा शरारती है मेरा राजू। अभी मेरे पास खेल रहा था, अभी रसोई में जा पहुंचा है। गर्म चूल्हे में पानी का गिलास उंडेल दिया है, सारा चूल्हा फट गया है। मेरी सास बेचारी को दिन भर लगकर बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी सास चूल्हा क्या बनाती है जैसे कोई बुत तराशते हो। तुमने कहीं ऐसा बांका चूल्हा नहीं देखा होगा। उसे चूल्हा बनाने का बहुत चाव है। थोड़े थोड़े दिनों के बाद चूल्हा तोड़कर फिर से बनाने लगती है। जिस दिन वह अंदर का चूल्हा बनाती है, उस दिन मैं बाहर के चूल्हे में रोटी बनाती हूँ। वैसे जहाँ तक बट पड़ता है, वह खाना पकाने का सारा काम स्वयं ही करती है। जब वह 15-20 दिन बाद रसोई का चूल्हा तोड़कर नया बनाने लगती है, उस दिन खाना पकाने के काम को हाथ नहीं लगाती। चूल्हा बनाने का तो उसे कोई खपत है। चूल्हा बनाने का तो उसे कोई खपत है। आए दिन मिट्टी में पानी डालकर बैठ जाती है। रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। मिट्टी गूंथती है और साथ में गाती है। ऐसे मैंने कभी उसे गाते हुए नहीं सुना। गाना तो एक तरफ, उसे कभी मन भर कर बातें करते भी नहीं सुना। पर चूल्हा बनाते समय वह ऐसे गाती है जैसे कोई चरखा काटे और लंबा गीत शुरू करते। ईश्वर ही जाने उसके मन पर क्या गुजरती है। माता पिता ने भी तो उसको जवानी से धोखा दे दिया। हीरे जैसी लड़की को तराजू में रखकर चांदी के रुपयों की एवज कंकड़ के पल्ले बांध दिया। अच्छा, दो शब्द जल्दी लिखना। तुम्हारी बनती। तुमने गीतों के बारे में पूछा है जो मेरी सास गाती है। पूरा गीत तो उसने कभी नहीं गाया। जब कभी एक टप्पा गाती है तो घंटा भर वही गाती रहती है। आज भी उसने पुराने चूल्हे को तोड़कर नया बनाना शुरू किया है। रसोई का दरवाजा अंदर से बंद है। उसकी आवाज़ आ रही है, आरे चंदा हाथ सेक ले, बिरहा की आग हमने आंगन में जलाई है। और मैं तुम्हें पत्र लिखने लग गई हूँ। मैं बाहर आंगन में बैठी हुई हूँ। उसने कोई और टप्पा शुरू किया तो मैं तुम्हें लिखूंगी। दिन ढल चला है, वही टप्पा सारे दिन गाती रही है। आज उसकी आवाज़ भी रुंधी हुई थी। कितनी देर तो उसकी आवाज़ निकली ही नहीं, रुक रुक कर आवाज़ आई है। अगर नौकरी पर चले हो तो हमें जेब में डाल लो, जहाँ रात पड़े हमें निकाल कर कलेजे से लगा लेना। हाँ, मुझे उसका एक गीत याद आया है। वह उसने आज तो नहीं गाया, पर पहले गाया करती थी। आपने न सुख का संदेशा भेजा, न आपने चिट्ठी भेजी है। किसके हाथ में सुख का संदेशा भेजूं, किसके हाथ में चिट्ठी भेजूं? लिखने के लिए कागज़ नहीं है, कलम के लिए काही नहीं है। दिल का टुकड़ा मैं कागज़ बनाती हूँ और उंगलियों को काट कर काहे। आँखों का काजल स्याही बनाती हूँ और आंसुओं का पानी डालती हूँ। परछाइयाँ ढलने पर चिट्ठी लिखने बैठी हूँ, मेरी आँखों से आंसू बरस रहे हैं। रसोई का दरवाज़ा अभी भी बंद है। बंद दरवाजे से भी जैसे गुजरकर मेरा मन उसके मन में समा गया है। इन गीतों में भला कौन सा गीत है जो उसके मन का नहीं और मेरे मन का नहीं। तुम्हारी बनती। एक बात मैं तुम्हें लिखना भूल गई थी। मेरी सास को कई दिनों से रोज थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता है। लाख मिन्नतें करो, वह एक पल के लिए भी आराम नहीं करती। भाभी, इस तरह तो डाकिया सचमुच ही एक दिन ईश्वर की चिट्ठी ले आएगा। तुम खुद ही अपनी जान के दुश्मन बनी हो। एक दिन मैंने उससे कहा, बताए क्या कहने लगी, तुम्हारा मुंह मीठा करूं अगर सच मुझे कोई डाकिया उसकी चिट्ठी ले आए। सच कहती हूँ, उसका दुख देखकर तो मेरे मन का भी दुख मामूली बन जाता है। ये इतने वर्ष और बीत गए, मैंने जानबूझकर ही तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा। वैसे तुम्हारे नए शहर का पता मैंने ढूंढ लिया था। पता है, जब कभी मैं तुम्हें पत्र लिखने की सोचती थी तो मुझे लगता कि अगर मैंने तुम्हें पत्र लिखा तो पता नहीं कौन सी यादें मुझे चारों ओर से घेर लेंगी। अब तो मैं कई दिन होश न संभाल सकूंगी। मेरे हाथों से चीजें गिरने लगेंगी और तरकारियां जलने लगेंगी। अब तो सारा घर मुझे ही संभालना पड़ता है। इतने वर्ष मेरी सास रस्सी की तरह बल खाती रही, चारपाई पर लेटी हुई जैसे उसी में खो जाती थी। उसका रंग कपास जैसा सफेद हो गया था। तुम्हें याद है या नहीं, एक बार मैंने तुम्हें लिखा था कि मेरी सास मिट्टी का चूल्हा बनाती है, मानो कोई बुत तराशती हो। आए दिन पुराना चूल्हा तोड़कर नया चूल्हा बनाने का उसका खप बीमारी में भी नहीं गया था। मैं उसे ज्यादा रोकती नहीं थी। जिस दिन वह मिट्टी गूंथती थी, उस दिन उसमें पता नहीं कहाँ से जान आ जाती थी। लगभग 15 दिन की बात है, उसे खून की उल्टी आई थी। तब न तो हमें उसके जीने की आशा थी, न स्वयं उसे ही। दिन के समय जब मेरा देवर हकीम को बुलाने गया, मेरा ससुर का स्वर्गवास हो चुका है, तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया, बोली, मेरा कहना मानोगी? बताओ भाभी जो कुछ भी हो। मेरा मन छलक रहा था। मैं उसके चारपाई से सर टेक कर रोने लग गई थी। अगली कहीं की रोती क्यों है? मैं तो एक एक मिनट करके राह देख रही हूँ कि कब ये प्राणों का पिंजरा टूटे और कब मेरी रूह आजाद हो जाए। बताओ भाभी क्या कहती हो? तुम मुझे मिट्टी गूंदो। पागल हो गई हो? सांस तुम्हारे खत्म हो रहे हैं। मुझे पता है, अभी तो कह रही हूँ, आखिरी बार, बस एक बार, वरना अभी वह सड़ियल हकीम आ जाएगा। भाभी तुमने दुनिया के सारे मोह तोड़ डाले। दुनिया से तुम्हारा मोह कभी हुआ ही नहीं। न तुम्हें रुपये से प्यार, न तुम्हें अपनी जान की परवाह, फिर तुम्हें इस चूल्हे से ऐसा मोह क्यों है? चूल्हे के नीचे मैंने कुछ दबाया हुआ है। मौत के बिस्तर पर पड़ी मेरी सांस हंसी और कहने लगी, ये ना समझना कि मैंने मोहरों की हांडी दबाई हुई है। भाभी तुम्हारा दिल मुझसे छुपा नहीं है। जिस घर में तुम्हारा मन भर गया है, उस घर में क्या तुम मोहरे दबाओगी? और मुझे भी मोहरों से क्या कोई मोह नहीं? और मुझे भी मोहरों से कोई मोह नहीं, ये मुझे पता है। तभी तो तुम्हारे जो मन में है निसंकोच कह दो भाभी। मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ, बेटी भी हूँ और सहेली भी तो हूँ। भाभी आंखों से रोई मगर होठों से कहने लगी, कभी कभी मैं तुम्हें कहा करती थी ना कि आओ तुम्हें दाने भून दूँ, मैं बहुत बड़ी भटियारिन हूँ। हाँ भाभी मुझे याद है, पर मुझे ख्याल था कि तुम यूं ही मजाक करती थी। तुम भला भटियारिन कैसे हुई? नहीं बनती, मैं सचमुच भटियारिन हूँ, किसी भट्टे वाली की भटियारिन। तुम अभी वह चूल्हा उखाड़ो, नीचे की ईंटें भी उखाड़ देना, कच्ची मिट्टी से ही लिपी हुई हैं। नीचे क्या है? छलनी, मेरे भटियारे की निशानी और साथ में कंगूठी भी, वह भी उसी की निशानी। और भाभी ने अपने उखड़ रहे सांसों में मुझे बताया कि उन्हें अपने गांव के एक लड़के से प्यार था। मोती नाम था उसका। माता पिता को नकली ही मोती पसंद आया, उन्होंने बेटी को कौड़ियों के मोल बेच दिया। विवाह के कुछ ही महीने हुए थे, दास मोती ने भटियारा बनकर उसके ससुराल के गांव में भट्टी शुरू कर दी। जब मेरी सास, रूपो नाम था उसका, तो मोती को भटियारा बना देखकर जैसे उसकी भट्टी में खुद ही भुनने लग गई। मोती ने जो कदम उठाया था उससे भला उसका क्या बनता सफर था, और रूपो का भी क्या सफर था। एक दिन रूपो उसके पाँव में गिरकर रोई, तुम्हें मेरी कसम है जो तुम अपनी ये हालत बनाओ, भुने हुए बीज अब उगेंगे नहीं। उसी दिन रूपो ने उसकी भट्टी तोड़ डाली। कड़ाही उससे उठाई नहीं गई, सो वह अपनी छलनी ही उठा लाई और उसे हुक्म दे आई कि अपने गांव वापस लौट जाए। मोती न उसकी कसम लौटा सका और न उसका हुक्म टाल सका। अपनी अंगूठी एक निशानी उसने रूपों को दी और दूसरे दिन पता नहीं कहाँ चला गया। मोती भटियारा क्या बना, रूपो उस सारी उम्र के लिए भटियारिन बन गई। मोती भटियारा क्या बना, रूपो को सारी उम्र के लिए भटियारिन बना गया। इसने उसकी छलनी और अंगूठी अपने पास रख ली। अंगूठी पर मोती का नाम लिखा हुआ था। कहाँ छिपाती, चूल्हा तोड़कर उसने दोनों चीज़ें मिट्टी के नीचे दबा दी और ऊपर नया चूल्हा बना दिया। दिन दिन भर चूल्हे के पास बैठकर वह रोटियां क्या पकाती, जैसे मन के विचारों को बेलती सेकती रहती। कभी कभी उसका दिल बहुत ही उदास हो जाता, वह चूल्हा तोड़ देती, उसकी निशानियों को गले लगाती, रोती और गाती। फिर उसी तरह दोनों निशानियों को धरती के हवाले कर देती और ऊपर नया चूल्हा बनाकर उनकी रखवाले के लिए बैठी रहती। भाभी की कहानी खत्म हुई, तभी उसकी सांस खत्म हो गई। उसे खून की एक और उल्टी आई और प्राणों का पिंजरा टूट गया, पंछी उड़ गया। जितने वर्ष भाभी प्राणों के पिंजरे में बंद थी, मोती की अंगूठी कभी अपनी अंगुली में नहीं पहन सकी। जब उसकी रूह आज़ाद हो गई, तब मैंने चूल्हे को उखाड़ा और अंगूठी निकाल कर उसकी अंगुली में डाल दी। मैंने ही उसे नहलाना था, मैंने ही उस पर कफन डालना था, इसलिए मुझे डर नहीं था कि कोई उसके हाथ में पड़ी हुई अंगूठी पर मोती का नाम पढ़ लेगा। और जब तक दूसरे दिन लोग उसके फूल चुनते, उस अंगूठी पर से उसके मोती का नाम ही मिट जाना था। छलनी मैंने अभी वैसे ही चूल्हे के नीचे रहने दी है। अगले महीने मेरी माँ हरिद्वार जा रही है और मैंने अपने पति को मना लिया है कि मैं 4 दिन को माँ के साथ जाऊँगी। वहाँ भाभी के फूलों को बहा दूँगी। आगे तुम समझ ही गई होगी किस प्रकार ट्रंक में छलनी रख कर ले जाऊँगी और उसके फूल छलनी में डालकर लहरों में बहा दूँगी। ओ मेरी सहेली, मेरी अपनी सहेली, आज तुम्हें न लिखूं तो और किसको लिखूं? मैंने भी अपनी यादों को आज ढूंढ ढूंढ कर देखा है। एक सुर्ख रुमाल उनके नीचे संभाल कर रखा हुआ है। चाहे कोई बंती हो, चाहे कोई रूपी या चाहे कोई और, किसने अपने मन की तहों में कोई रुमाल या अंगूठी नहीं दबाई हुई होती? हम अभागिने जो किसी से प्यार करती हैं, जन्म से भटियारिने हो जाती हैं। दिल की भट्टी पर अपने सांसों को दानों की तरह भूनती हैं और यादों की छलनी में से वर्षों रेत छानती हैं। तुम्हारी बनती एक भटियारिन। आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम की कहानी, एक रुमाल, एक अंगूठी, एक छलनी, मेरी यानी अनूर्वी मेहरा की आवाज़ में। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए गाथा से। गाथा, रूह वही, रूप नया।